शांति। आप सभी बाबा के मीठे बच्चे, बाप समान स्वयं को बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हर आत्मा का यही संकल्प है, मीठे बाबा मुझ आत्मा को आप समान बनना ही है। और बाबा भी रोज मुरली में कैसे बच्चे बाप समान बन जाएं रोज युक्ति बताता है। तो जो आत्मा माया जीत, प्रकृति जीत और पुराने संस्कार जीत बन गई, वही आत्मा बाप समान बन सकती है। तो माया जीत बनने का साधन क्या है? ऐसे तो रोज बाबा मुरली में बताता ही है, लेकिन विचार करो कि जब आप आत्माएं सतयुग में देव आत्मा थी, तब आप आत्मा के पास ये शरीर था, शारीरिक संबंधी थे, माँ बाप भाई बहन सब थे, परिवार था, समाज था, फिर भी हम माया जीत थे। और आज वही आत्मा के साथ शरीर है, परिवार है, समाज है, लेकिन आत्मा माया के अधीन है। तो दोनों में क्या अंतर पड़ गया? जबकि सतयुग में भी शरीर परिवार था, समाज था, तो माया जीत थी, और अब वही है तो माया के अधीन है। इसका मुख्य एक ही कारण है कि जब हम आप आत्माएं सतयुग में थी तो देह अभिमान मुक्त थी, आत्म भान का भाव पक्का था, आत्म भान नहीं था, लेकिन आत्म भान का भाव पक्का था, जो अभी का संस्कार था। इस कारण से आत्मा शरीर के आकर्षण से मुक्त थी, पांच तत्वों के आकर्षण से मुक्त थी, इसलिए माया जीत थी। अभी आत्मा सतयुग से शरीर के साथ रहते रहते कलयुग के अंत तक शरीर का इतना प्रभाव पड़ गया आत्मा पर कि आत्मा स्वयं को भूल गई और स्वयं को शरीर मानने लगी। और जैसे शरीर माना तो पांच विकारों की प्रवेशता हो गई। इस देह से पांच विकार का संबंध है। तो अब पांच विकारों से मुक्त होने का साधन आत्म अभिमानी स्थिति। देह से विकार है, आत्म स्थिति से देवताई संस्कार है, माया मुक्त है। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए जो आत्मा की चार स्टेजेस हैं, जब हम आप सब आत्मा की उस चारों स्टेजेस का अभ्यास करेंगे तब निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सिर्फ इस संकल्प या अभ्यास से आप निरंतर आत्मक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आत्मा की जो चार स्टेजेस हैं, जो आप बाप दादा की मुरली में सुनते हैं, वो चारों स्टेजेस हैं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, चार स्टेजेस हैं। सुनते होंगे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी। बाबा इन चार शब्दों का प्रयोग करता है। कभी कहता आत्म अभिमानी बनो, कभी कहता देही अभिमानी बनो, कभी विदेही कहता, कभी अशरीरी कहता है। तो चारों का अभ्यास जब करेंगे तब आत्मा की निरंतर आत्मक स्थिति रह जाएगी। तो पहला है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात हर कर्म करते हुए देह का आधार ले करके कर्म करते देह का मालिक बनकर रहना, अर्थात इस देह से कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर कर्म करना कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्री के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, हूँ आत्मा इंद्रियों का आधार ले करके कर्म कर रही हूँ। तो एक है इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना। जब इस स्थिति का अभ्यास पढ़ाने लगेंगे तो धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला रही हूं। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे आत्मा भी करण करावन हार है। आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती भी है और इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती भी है, मालिक है। तो मालिकपन की स्टेज पाप समान की स्टेज है। आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है, इसका यादगार कमल का फूल है। कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से स्वयं को न्यारा रखना, इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही, लेकिन बाप समान की स्टेज है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला रही हूं, कर नहीं रही हूं लेकिन चला रही हूं। मैं आत्मा अलग हूं, इन कर्म इंद्रियों को आर्डर देकर चला रही हूं, जिसको बाबा ने कहा उपराम स्थिति, उपराम स्थिति। और इसका यादगार उपराम स्थिति का यादगार है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की तीन विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है। वो तीन विशेषता है, पहली विशेषता है आपने गुलाब का फूल देखा होगा, जब कंप्लीट खिल जाता है तो जरा सा हाथ लगाओ सारे पत्ते झड़ जाते। और किसी फूल के पत्ते झड़ते नहीं हैं, सूख जाएंगे लेकिन झड़ेंगे नहीं। तो गुलाब के फूल की विशेषता पहली, सबके साथ सेवा करते हुए एक सेकंड में सबसे न्यारा हो जाना। संकल्प किया मैं आत्मा परम धाम निवासी हूं, फिर यहां का कुछ संकल्प ना आए, किसी की भी याद ना आए, इसको कहा जाता है उपराम स्थिति। तो पहली निशानी। दूसरी निशानी, गुलाब के फूल में कभी भंवरा नहीं बैठता है और फूलों में भंवरा बैठता है, लेकिन गुलाब के फूल में कभी नहीं बैठता है। बहुत बड़ी विशेषता है, अर्थात सबके साथ सेवा करते हुए रहते हुए सबसे एकदम उपराम, जैसे कोई है ही नहीं, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। और तीसरी विशेषता है कि जब पत्ते झड़ जाते हैं तो बीच में बूर बचता है इतना बड़ा, अर्थात सदा आत्मक स्वरूप में रहने वाला रूहानी रूहे गुलाब। ये तीन विशेषता गुलाब की है। उपराम बनने के लिए पहले न्यारा बनना पड़ता है, कमल फूल समान बनना पड़ता है, अभ्यास करते करते उपराम की स्थिति आ जाती है। जैसे आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, पहले वो बर्तन में चिपकता है, उसे आप छुड़ाते हो, चिपकता है छुड़ाते हो, चिपकता है छुड़ाते हो, और जब कंप्लीट बन जाता है तो वो बर्तन को अपने आप छोड़ देता है। है बर्तन में लेकिन बर्तन से अलग हो जाता है। तो एक ने ऐसे क्लास करा रहे थे तो एक ने पूछा, आजकल तो ऐसा बर्तन निकला है जिसमें चिपकता ही नहीं है। तो हमारी स्थिति वो क्यों ना हो? तो हम कहा राइट बात है, आजकल ज्ञान इतना परफेक्ट हो गया है, पहले तो इतना परफेक्ट ज्ञान नहीं था, आजकल तो इस परफेक्ट के आधार से कहीं जरा सा भी बुद्धि लगनी नहीं चाहिए। समय समीप है, ज्ञान स्पष्ट है, मंजिल सामने स्पष्ट है, बस मैं आत्मा एवर रेडी। ऐसी स्थिति, इसको कहा जाता है देही अभिमानी। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हैं तब शरीर की आवश्यकता नहीं है, उस समय टोटल शरीर को भूलकर आत्मक स्वरूप में टिक करके बाबा को याद करना, मैं हूं ही ज्योतिर्बिंदु आत्मा। आत्मा और परम आत्मा का मिलन, आत्म अभिमानी स्थिति। विदेही अर्थात जब चल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, बैठे हो, तो किसी न किसी सोमान के स्मृति में रहो, सोमान में। सोमान देह अभिमान को भुला देगा, सोमान आपके दृष्टि वृत्ति कृति संकल्प सबको चेंज कर देगा। क्योंकि जैसा आपका संकल्प होगा वैसे दृष्टि वृत्ति स्वतः बन जाएगी, इसलिए सोमानधारी बनकर रहो। और चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो बिना शरीर के, तो आप सारे दिन के बीच बीच में जब भी आपको समय मिले इस शरीर से डिटैच होकर अपने को परम धाम निवासी, जहां ना शरीर है न शरीर से संबंधित कोई चीज है, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, परम धाम में सिर्फ आत्माएं हैं, आत्माओं के बीच में बाबा है। एकदम डेड साइलेंस का अभ्यास करो। जब बीच बीच में ये अभ्यास करते रहो तो ये अभ्यास अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत मदद देगा, सहज कर्मातीत बन जाएंगे। तो पहला है माया जीत, विधि है आत्मक स्थिति, दूसरा है प्रकृति जीत। आप जब देव आत्मा बनेंगे तब आप प्रकृति जीत होंगे, लेकिन इस समय आत्मा को प्रकृति जीत बनाना है, माया जीत बनना सहज है, लेकिन प्रकृति जीत बनना थोड़ा ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का है और आत्मा का सबसे नजदीक से नजदीक रिश्ता इस शरीर से है। तो आत्मा प्रकृति जीत बन जाए इसकी दो विधि है। एक विधि है कि आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर बाप के पास बैठकर पूरे प्रकृति को पावन बनाए, पाप के साथ साथ पांचों तत्वों पर लाइट की किरणें, दिव्यता की किरणें पांचों तत्वों पर डाले। लेकिन विधि है पांच तत्वों से परे की इस स्थिति में स्थित होकर करेंगे तो वो लाइट की किरणें प्रकृति को पावन बनाएंगी। अगर आप इस समय प्रकृति को पावन बना रहे हो, सतो प्रधान बना रहे हो, तो जितना सतो प्रधान बनाएंगे उतना सतो प्रधान प्रकृति पर राज्य करेंगे। और वर्तमान समय यही प्रकृति आपको बहुत सहयोग देगी, दुनिया के लिए विनाश होगा, बाढ़ होगा, भूकंप होगा, तूफान होगा, लेकिन आपको ये प्रकृति सहयोग देगी। دوسرے کے لیے موت ہے، آپ کے لیے سہیوگ ہوگا۔ کیسے؟ ایک ایگزامپل، کچھ سمے پہلے گجرات میں بھوکمپ آیا تھا، اس کا مکھ کیندر بھوج آدی تھا، تو وہاں پر بھی اپنے بابا کا سینٹر تھا، تو اس بھوکمپ میں ایک اپنے بابا کا سینٹر چھوڑ کر باقی ایک بھی بلڈنگ نہیں بچی، ہاسپیٹل، اسکول سب بناش ہو گیا، صرف بابا کی بلڈنگ بچی تھی۔ ایک تو یہ پرکرتی نے ساتھ دیا، دوسرا اور کیا سہیوگ دیا، وہ کچھ ایریا ہے، وہاں کھارا پانی آتا ہے، ساگر ہے، میٹھا پانی نہیں ہے ادھر، لیکن جب بھوکمپ آیا، دھرتی زور سے ہلی، تو کھارا پانی والا لیئر چینج ہو گیا، میٹھا پانی آنے لگا۔ تب سے ابھی تک میٹھا پانی آ ہی رہا ہے۔ تو دوسرے کے لیے پرکرتی بناش کے نمت بنی، اور آپ نے پرکرتی کی سیوا کی، اس لیے پرکرتی آپ کی سیوا کر رہی ہے، سہیوگی بن رہی ہے۔ تو جتنا پرکرتی کو ستو پردھان بنانے کی سیوا آپ کریں گے، اتنا پرکرتی آپ کو اس سمے بناش کے سمے سہیوگ دے گی، اور اس سمے بھی ابھی بھی جتنا پرکرتی کو ستو پردھان بنائیں گے، یہ شریر تندرست ہوتا جائے گا، اس کی بیماری کم ہوتی جائے گی۔ یہ بھی پرکرتی ہے۔ تو ایک تو پرکرتی کو ستو پردھان بناؤ، دوسری بات، پرکرتی جیت بننے کے لیے جو پانچوں تتو ہیں، ان پانچوں تتوں کا جو گن ہے، اس گن کو دھارن کرنا، ارتھات اس تتو پر وجے پراپت کرنا۔ جیسے پہلا تتو دھرتی ہے، دھرتی کی وشیشتا کیا ہے، کیا گن ہے وشیش دھرتی کے، کیا گن ہے پانڈو؟ شکتیاں۔ اچھا، دھرتی کے دو وشیش گن ہیں، ایک گن ہے دھرتی داتا ہے، سب کچھ دھرتی سے ہی ملتا ہے، اناج دھرتی سے ہے، پانی دھرتی سے ہے، سارا کھنج پدارتھ دھرتی سے ہے، سب کچھ دھرتی سے ملتا ہے۔ تو دھرتی کے سمان داتا بنو، جیسے دھرتی داتا ہے، ایسے دھرتی کے سمان داتا کے گن دھارن کرو، سب کو پریم دو، سنیہ دو، سہیوگ دو، شکتیوں کا دان دو، داتا بنو۔ جتنا اس سمے داتا بنو گے، اتنا دھرتی शक्ति आपका सहयोगी बनती जाएगी। अर्थात धरती से जितनी चीजें प्राप्त होती हैं, वो आपको धरती अंत तक देती जाएगी और धरती के द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे का होगा, भूकंप आएगा, कुछ आएगा, धरती हिलेगी, मरेंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। धरती सहयोग देगी। तो एक विशेषता है धरती की कि धरती दाता है, देती है, लेने की भावना नहीं है, देती है। और दूसरा गुण है, धरती को एक रस रहने का वरदान है। सदा एक रस रहती है, चाहे धरती पर शमशान बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे गड्ढा खोदो, चाहे ऊंची मंजिल बनाओ, धरती एक रस है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं अपनी स्थिति को मान अपमान दुख सुख लाभ हानि सब में एक रस बनाने का अभ्यास करो। कैसे बनेगी दुख सुख में एक रस स्थिति? सुख में तो ठीक है, लेकिन दुख में कैसे बनेगी? हानि में, नुकसान में कैसे बनेगी? ग्लानि में कैसे बनेगी? एक रस स्थिति महान स्थिति में रहना, इसका दो आधार है, ड्रामा और बाप। जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी, और बाबा हमारे साथ है, भगवान कल्याणकारी है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात। देखने में अकल्याण लगेगा, लेकिन कल्याण बहुत बड़ा है। एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली की बात है कि एक बहन साकार बाबा के समय थी, तो शुरू में जब यज्ञ में थोड़ी बहुत गरीबी थी, बेगरी पार था, तब उस बहन ने अपनी सब कुछ प्रॉपर्टी सब यज्ञ को दे दी थी बेचकर। तो ऐसी आत्मा के लिए बाबा मदद देने के लिए बांधायमान है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन वो बहन उठी सुबह योग करने, तो छोटा सा किचन था, तो गैस सिलेंडर का जो पाइप लाइन था वो रबड़ का था, उसको चूहे ने काट दिया था। किचन में वेंटिलेटर भी नहीं था, सारा गैस भरा हुआ था, क्योंकि उस पैन ने जहां खाना बनाते उस तो रेगुलेटर बंद किया, लेकिन जो गैस का रेगुलेटर था वो नहीं बंद किया था, इसलिए सारी गैस निकल गई। तो जैसे बहन पहुंची, भांस तो आई उसको, लेकिन जैसे उसने लाइट जला के माचिस जलाया, गैस भरी हुई थी, पकड़ लिया वो बहन, उसी में जल के मर गई। तो जब भोग लगाया तो बाबा से पूछा, बाबा आपने इसकी मदद क्यों नहीं की, आपने इसे टचिंग क्यों नहीं दिया, जबकि इतनी मदद आपकी की। तो बाबा ने कहा कि इस बच्ची ने आई बेल के समय मदद दी है, बाप को इसका रिटर्न बहुत ऊंचा पद देना ही है, लेकिन इस बच्ची के सिर पे इतना पाप का बोझा था, इतना ज्यादा था, ये कितना भी योग करती लेकिन खत्म नहीं कर पाती। लेकिन अब इस बच्ची का सारा खाता खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो देखो सीन आ कल्याण की, लेकिन कल्याण कितना बड़ा है। तो एक रस स्थिति अर्थात ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, बाबा मेरे साथ है, मेरा सब उसमें कल्याण ही कल्याण है। सिर्फ मुझे क्या करना है, श्रीमत प्रमाण चलते रहना है। अगर श्रीमत को तोड़ा तो बाबा जिम्मेदार नहीं है। अगर श्रीमत प्रमाण चले तो बाबा हमारा जिम्मेदार। दूसरा तत्व है पानी, जल। जल की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, उसकी भी दो विशेषता है। एक, जल को एडजस्ट होने की पावर जल में ज्यादा है। चाहे छोटे चम्मच में पानी रखो, चाहे बड़े गागर में रखो, चाहे सागर में रखो, सबके साथ मिक्स हो जाता है। ऐसे नहीं हम छोटे चम्मच में नहीं रहेंगे, कहीं भी रखो एडजस्ट हो जाएगा। आप पानी में कोई भी रंग डालो सब एडजस्ट हो जाएगा। तो पानी की सबसे बड़ी विशेषता है उसके अंदर एडजस्ट होने की पावर बहुत ज्यादा है। हम आप सब भी इतना अपने को एडजस्ट करें, कहीं भी रहें, किसी के साथ रहें, कैसी परिस्थिति में रहें, लेकिन सदा बाप की याद में रहे, सदा रूहानी नशे में रहे, एडजस्ट होके रहे। तो एक विशेषता है कि एडजस्ट हो करना, और दूसरी पानी की विशेषता है कि जल शीतल होता है, ठंडा होता है। अगर आप उसे गर्म करो थोड़ी देर में फिर ठंडा ही हो जाएगा। तो जल का ओरिजिनल गुण है ठंडा। तो जो ब्राह्मण बच्चे शीतल योगी हैं, शीतल काया वाले हैं, सदा दिल दिमाग शीतल है, ऐसे बच्चे ही प्रकृति जीत बन जाते हैं। अर्थात ये गुण जो धारण कर लेगा उसको जल सहयोग देता रहेगा और अंत में जल के द्वारा ऐसी आत्मा को कोई नुकसान नहीं होगा विनाश के समय, बाढ़ के द्वारा, तूफान के द्वारा। ऐसे में उस आत्मा को कुछ नुकसान नहीं होगा, मदद मिल जाएगी। उड़ीसा की बात है, एक बार ऐसे आया था सागर से तूफान, तो 3 सेंटर थे सागर से थोड़ी दूर पर, 1 5 किलोमीटर, 1 7 किलोमीटर, 1 30 किलोमीटर। तो जो 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो जैसे तूफान की चेतावनी मिली तो बड़ी बहन ने फोन किया कि जल्दी भाग के आ जाओ, तो वहां से फिर भी निकलना चाहा, लेकिन तब तक सागर का पानी आ गया, 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और देखते देखते अब पहला मंजिल पानी भर गया। अब बहने ऊपर 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 चढ़ती गई, 250 किलोमीटर स्पीड की हवा थी, साय साय हो रहा था, कुछ पता नहीं पड़ता, तेज हवा थी। तो ग्राउंड फ्लोर पर अपना सेंटर था, फर्स्ट फ्लोर पर मकान मालिक रहता था। तो ये बहने वहां दरवाजा फटफट फटफट कर रही है, खोलो खोलो खोलो, लेकिन वो समझ रहा है कि तेज हवा चल रही है, इससे फटफट फटफट हो रहा है, वो खोलने नहीं आया। क्योंकि एक बार दरवाजा खुल गया तो बंद नहीं हो पाएगा, इतनी तेज हवा थी। तो अंत में बहने निराश होकर के बाबा को याद करना शुरू किया, बाबा आप ही रक्षक हो। तो जब बहने यहां बाबा को याद करना शुरू किया, तुरंत जो मकान मालिक था उसको टच हुआ, अरे नीचे तो बहने थी, उनका क्या हाल हुआ होगा, उसको टच ही नहीं। और उसने देखा होगा कई दरवाजों में छोटा सा छेद लगाकर रखते हैं देखने के लिए, किसी किसी के दरवाजे में होता है। उसने उससे देखा बाहर बहने खड़ी थी, तो दरवाजा खोला, बहने आ गई, सेफ रह गई, उस बाढ़ ने कुछ नहीं हुआ। दूसरा था जो 7 किलोमीटर की दूरी पर था, उस पर बड़ी बहन का फोन आया, जल्दी आ जाओ। तो वो बहने अच्छे रूहानी नशे में थी, बोला मैं नहीं आती हूं, देखती हूं प्रकृति हमारा क्या कर लेती है, बाबा हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। बहन कह रही आ जाओ, लेकिन थोड़ी नशे में थी, इतनी देर में पानी आ गया। तो जब पानी आया तो ये क्या करें, अब पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये बहने यहां मधुबन से वापस गई थी, तो अटैची में बाबा का चित्र था, नया कपड़ा था, जैसे कपड़ा होता बहनों को, अटैची लेकर के ऊपर चढ़ी। तो ऊपर चढ़ी तो पानी धीरे धीरे ऊपर तक आ गया। जब ऊपर आ गया पानी, तो कईयों का देखा होगा छत के ऊपर ऐसे थोड़ा पतरा लगा देते हैं, उसके नीचे रहते कुछ सामान वगैरह रख लेते। तो वो बहने फिर पतरे पर चढ़ गई, 250 किलोमीटर स्पीड की हवा है, आप सोचो पतरा ठहर सकता है, इसमें तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। लेकिन जैसे बाबा का सेंटर जो था वहां तक जब तक पहुंचे तब तक फिर हवा का रुख चेंज हो गया, दोबारा हवा रिटर्न होकर के उसी तरफ चली गई, सब बहने सेफ रह गई। तो देखो जल भी सेवा किया, ऐसे हवा है। हवा की विशेषता है हवा हल्की होती है, और हवा के लिए कहा गया है कि प्राण वायु, अगर थोड़ी देर भी हवा बंद हो जाए तो प्राण खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों विशेषता धारण करनी, एक सबको जिए दान देना है, सबको बाबा का परिचय देते रहना है, बाबा की याद दिलाते रहना है, जिए दान देना है, प्राण वायु है सबको जिए दान दो। दूसरा एकदम हल्के रहो, डबल लाइट स्थिति में, फरिश्ता स्थिति में स्थित रहो। चौथा है अग्नि, अग्नि की विशेषता है अग्नि जलाती है और रूप परिवर्तित कर देती है। दो विशेषता है, आग का काम है जलाना और रूप परिवर्तित हो जाना। जब कोई चीज जल जाती है तो उसका रूप बदल जाता है। तो आपका इतना तेज योग हो जो आपके सारे विकर्म जल जाए, एकदम आत्मा प्योर कंचन बन जाए। तो एक अपने विकर्मों को जलाओ योग अग्नि के द्वारा, एकदम आत्मा को प्योर बना लो। दूसरी बात है आपका रूप बदल जाए, अर्थात जो पहले देह अभिमान का रूप था वो बदलकर फरिश्ता रूप या कोई सोमानधारी रूप या आत्मक स्वरूप वाला रूप धारण कर लो। ये अग्नि का गुण है, इससे आग के द्वारा आपको नुकसान नहीं होगा। पांचवा है आकाश, आकाश की दो विशेषता है, आकाश ऊंचा है और पोलार है खाली है, दो विशेषता है। तो ऊंचा अर्थात सदा अपने को ऊंची स्थिति में स्थित रखना, अपने को सदा ऊंची स्थिति अर्थात बाप समान की स्थिति में स्थित रखना, सदा ऊंचा चाहे सूक्ष्म वतन या मूल वतन ऊंचे स्थान पर रहना, और सदा पोलार अर्थात खाली व्यर्थ से मुक्त एकदम क्लीन और क्लियर, ये गुण धारण करो तो आकाश मार्ग से आने वाला कोई भी तूफान आपको दुख नहीं देगा। और अंत में आकाश मार्ग से आने वाली सब चीजें आपको सुखदाई बना देगी। तो तो यह पांचों तत्व के पांचों गुण धारण कर लो तो प्रकृति जीत बन जाओगे और प्रकृति को पावन बनाओ तो प्रकृति आपको सहयोग देगी और भविष्य में प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।